कटी राधा जी का मान बना रहा था। वो अपने मान से नहीं जीतती शादी में। हाँ जीत जाती है कब, यदि कृष्ण उनके पहिया पड़ करके कान पकड़ के कहेंगे जैसे प्रिया जी मैं अब बस सब हो सकता है। There are two places in Braj, Dig and Adi. Dig is this place and Adi is between Govardhan and Mathura. Dig because Krishna is Supreme Lord. He is Lord of Lords. He is Tri Sapta Saptam Satatya Yoni Satatya Niritam. Three Sapta, truth. He translates the truth. But when he comes in Braj and especially with the gopis and with Srimati Radhika, gopis resemble him from Sapta, the truth. So here, Krishna being Supreme Personality of Godhead, he left that truth that I am God. And he came in the lotus feet of Srimati Radhika. I am not Supreme Lord. I am your Das. And Adi, when Srimati Radhika becomes in anger, not anger, but like love, anger. Then Krishna, Srimati Radhika never gives his man, felt hard to change that. But Krishna takes his ears in his hands and take oath, oh Srimati ji, I will never do fault anything in your lotus feet. Be kind to me and give your man in donation. Give your anger in donation. So that is so this is deep. यहाँ पर आप लोग एक चीज समझिए, मधुपुरी को शत्रुघ्न जी ने बचाया लवणासुर को मारकर, आप इसको बोल देंगे, और मधुपुरी को मथुरा को बचाया, और वहां पर शत्रुघ्न जी की उपासना की। शत्रुघ्न जी का मंदिर मथुरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है, हम लोगों के पास भी है, एक और भी बड़ा मंदिर है मथुरा में। इसे शत्रुघ्न जी की वहां पर पूजा होती है, क्योंकि वो भी भगवान ही है। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये भरत शत्रुघ्न, ये चारों भगवान के अंश हैं। चारों में से कृष्ण अंश ही हैं उनके, और वो लोग उनके अंश हैं। वैसे राम जी कृष्ण के अंश हैं, ये समस्त शास्त्र कहते हैं। इसलिए उन्होंने मथुरापुरी को बचाया। उन्होंने अपने भैया शत्रुघ्न भरत जी को उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ पर अकेले मन नहीं लगता है, तो आप कृपा करके आप भी यहाँ पर एक नगर बसाइए, जैसे हम लोग कभी कभी भी जाएंगे, कभी अयोध्या में भी जाएंगे और कभी कभी यहाँ रहेंगे तो हम मिलेंगे। तो उसने भरतपुर की राजधानी बनाई और भरतपुर की नींव दी। तब से ये भरतपुर भाषी में वहां पर सूर्यवंशी राजा लोग राज्य करते हैं। अभी तक उनका चला रहा है, रामचंद्र जी के समय से, भरत जी के समय से। इसलिए वो भरतपुर उसी के अधीन किए अब हो गया है। इन दोनों को वहां जब देखा तो दोनों भाइयों ने कहा कि राम तो अयोध्या में रहते हैं, कभी आप ही लक्ष्मण जी कभी कभी आप तो अभी यहाँ पर आ जाइए, तो आप ही कोई एक स्थान यहाँ पर बनाइए कि आपके पुत्र लोग यहाँ पर राजा होंगे और हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, कभी अयोध्या भी जाएंगे यहाँ आएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई और यहाँ के राजाओं के ये उपास्य बने। इसलिए लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का यहाँ पर मंदिर है, उसमें राम को उन्होंने रखा है, क्योंकि वो सबके उपास्य हैं। लक्ष्मण जी बलदेव जी के प्रकाश है। जब जब कृष्ण की कोई भी अवतार जगत में उतरता है तब तब बलदेव जी भी उनके छोटे भैया बड़े भैया के रूप में जरूर आते हैं। तो राम रूप में जब आए तो लक्ष्मण जी उनके भैया बने छोटे, और सारा जीवन भर उनके साथ रहे। विशेष एक घटना बताऊं, जबकि सीता जी को रामचंद्र ने लंका में त्याग कर दिया, मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं रहूंगा। मैंने लंका विजय की, रावण का ध्वंस किया, उसके वंश में कोई प्रदीप जलाने वाला नहीं रखा विभीषण को छोड़ करके। सीता तुम पैदा रहो, मैं अब तुझे ग्रहण नहीं करता, मैं जहां इच्छा हो वहां चली जाओ, दूसरों के घर में रही। ऐसा क्यों किया? वो बहाना बना करके असल सीता को प्रकट करना चाहते थे, और माई की जो सीता की छाया सीता उसको अग्नि को दे करके और अग्नि में से दे रखा था, इन्होंने प्रकट करना चाहा। इसलिए बहाना बना करके ऐसा किया। तो सीता जी बोली, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैं पहले विरह में मैं चल करके खत्म हो जाती, आपने इसके लिए इतना क्यों प्रयास किया? और ये कह करके रोने लगी, यदि आपने छोड़ दिया तो मैं किस तरह से उसके क्या करूंगी, मैं भी आग में जल करके मर जाऊंगी। लखन जल्दी से तू मेरे लिए सीता बनाओ। उस समय लक्ष्मण जी राम के तरफ में देख रहे हैं, रामचंद्र जी मौन शास्त्र के बड़े गंभीर हो गए हैं। उस समय में लक्ष्मण जी उनके आदेश से सीता बनाई, और सीता जी कह रहे हैं ये सब लक्ष्मण जी को हमने दोष दिया, उनके चरणों में हमने अपराध किया, इसलिए आज आज हो रहा है। जब मेरा विवाह हुआ और जब मैं अयोध्या में आई तो प्रथम दिन रास्ते में जब राम से मिली, उस समय देखा जय लक्ष्मण लाल जी वहां पर है। मैंने कहा जय लक्ष्मण लाल जी, मेरे प्यारे देवर, अब आप यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, आप यहाँ से पधारिए, अब यहाँ पर मेरा अधिकार हो गया। लक्ष्मण जी बोले, मैंने जन्म से ही इनकी सेवा की है और एक सेकंड के लिए भी इनका साथ नहीं छोड़ा, और आपका एक दिन में ही अधिकार हो गया, मैं नहीं छोड़ता। सीता जी बोली, धर्म साक्षी है, अब आपका अधिकार नहीं रहा, अब मेरा अधिकार हो गया। दोनों इस मध्य में बात ही बात होने लगा, दोनों रामचंद्र जी के निवेदन किया ये आप अब बतलाइए, अब से रात्रिकालीन जो सेवा होगी या जब सेवा होगी, स्त्री का अधिकार है ना भाई का अधिकार है? राम बोली, जी लक्ष्मण तो अपने जन्म से ही एक ही साथ हम लोग जन्मे, एक ही दिन में जन्मे, सभी से हमारी सेवा कर रहा है, किंतु अग्नि की साक्षी देकर के मैंने सीता जी को ग्रहण किया और अपने अर्थांगनी बनाया, और इनके साथ में निर्वाह करने के लिए हमने इनका हाथ पकड़ लिया, तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि आज से तू हमारी अर्थांगनी और हमारी सेविका भी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अब किसका अधिकार है मैं नहीं निर्णय कर सकता, वशिष्ठ जी को बुलाया जाए और वो निर्णय। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने कहा बहुत सोच विचार करके, ठीक है आपने जो सेवा की है लक्ष्मण जी, ठीक है आपने सेवा की, बाहर में जो कुछ सेवा होगी आप करेंगे, किंतु अंदर मन में सीता जी का पूरा अधिकार है, आज से वो सीता जी यहां पर रहेंगी, आपका यहां पर अधिकार है। लक्ष्मण जी रोने लगे और रोते रोते सीता जी कह रही है, मैंने अपने देवर को मैंने बहुत कष्ट दिया और वहां से निकाल दिया। लक्ष्मण जी रोते रोते निकल गए। दूसरी बात, जब रावण सन्यासी का भेष लेकर के दंडकारण्य में पहुंचा और बोला भिक्षां देवी भिक्षां देवी भिक्षां, सन्यासी का भेष लेकर कोई कपड़ा नहीं धरनी में कपड़ा भेज खड़ाऊ पर चढ़कर और वहां पर आया, भेष बदल करके त्रिदंडी साधु बन गया और बोला भिक्षां देवी सीता जी, इसके पहले मारी सुंदर शरीर बन गया सोने का और राम को लेकर के बहुत दूर चला गया। सीता जी ने कहा, प्रिय इस हरी को पकड़ करके जाएगी। मैं कौशल्य भरत भैया को मार दूंगी, और यदि ऐसे नहीं तो मार करके ले इसका चमड़ा, उसको भी भरत जी को दूंगा दूंगी। इसे किसी प्रकार से हिरण को छोड़ना नहीं है, बड़ा सुंदर और सुहाना है, बड़ा लोभनीय है। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी ने अच्छी बात उसके पीछे दौड़े और बहुत दूर तक ले गया, और जब बहुत दूर गया तो राम ने जब बाण छोड़ा पुत्र राम जी जानवी करके उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसको बाण लगा और वो बोला हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, राम के स्वर में बोला। और होते ही जब यहाँ आवाज आई, जंगल में प्रतिध्वनि की आवाज आई, सीता ने कहा राम पर कोई विपत्ति पड़ी है, जरूर इसलिए हा लक्ष्मण करें। उन्हें जैसे देवर तुम चले जाओ जल्दी से और उनकी सहायता। लक्ष्मण जी कहा कि मैं नहीं जा सकता, राम ने आपका भार हमारे ऊपर में दिया है, यहाँ आप मेरी माता के समान हैं। फिर राम का उद्देश्य मैं ये आदेश मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, राम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, मैं जानता हूँ वो स्वयं परम है, उनको कहा मैं जानता हूँ, इसलिए आप कोई चिंता मत। अरे दुष्ट, तू भरत का स्पाई है, भरत का गुप्तचर है, तू चाहता है जयराम बन जाए और मैं तुम्हें पति के रूप में वर्णन कर दू, भारतीय नारी ऐसा नहीं कर, मैं आग में जल मरूंगी, तेरे साथ में नहीं रह सकती, तू बड़ा दुष्ट है, तेरा हृदय काला है, मैंने बहुत सी गालियां दी उस समय। लक्ष्मण जी रोने लगी, इन्होंने सीता जी का मुंह कभी नहीं देखा पैर के अतिरिक्त, जब ऐसा लंच लगाया तो उन्होंने कहा जैसी अब भगवान की जैसी मर्जी होगी, अब उसे सहा नहीं जाता। माता जी जैसे भी आपने कटु वचन बोला है, मैं जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि कुछ आपका अनिष्ट होने वाला है, किंतु मैं धनुष से लकीर ले लेता हूं, इसके बाद में कहूं खबरदार मत जाना, और जाएंगे तो कुछ पक्षीदार होगी। बस उन्हें धनुष से लेकर के जहां पर वो कूदी थी उसके चारों तरफ से एक लकीर मंत्र पूत कर दिया और चले गए। और जब ब्राह्मण आया इच्छा से ही करने लगा, पहले उसने प्रयास किया कि कुटी में कूद करके और सीता को पकड़ ले जाऊं, किंतु जब ही लाइन पर पैर रखता आप चल वो खराब नहीं जाती लकड़ी वाली तो मर ही जाता, उसके प्राणी निकल जाते। रावण भी बड़ा पक्का तपस्वी था, वो साधारण नहीं था, जय विजय में से जय था, तपस्या का बल था, किंतु सारा तपस्या का बल दूर हो गया, उस लाइन को पार नहीं कर सका। सीता जी उसकी आवाज सुनकर के देखी कि एक अतिथि आया है श्रीडंडी, इस पर विश्वास हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं फिर बाद में नहीं आऊंगी, तुम ले लो। उन्होंने कहा कि पितर की गंडी किसी तरह का मैं शिक्षा नहीं लेता, और मैं अभी अभी संपात कर दूंगा, तुम्हारा पति खत्म हो जाए, और यदि आप करके दे दीजिए भिक्षा बाहर में तब तक ले लूंगा, और तुम सुखी रहेगी, सौभाग्य बनी बनी रहेगी। बार बार ऐसा करने से सीता जी बाहर आ गई। मैंने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और लक्ष्मण पर अपराध लगाया, उनको बहुत बुरा सजा करा, आज उसी का फल है कि राम से मेरा वियोग हो रहा है। ऐसे लक्ष्मण जी थे, जहां जहां जब अवतार हुआ फिर कृष्ण के रूप में जब राम आए तो वो बलदेव जी के रूप में, क्यों छोटे भाई आने से हमको उनकी सारी बातें माननी पड़ती है और मुझे कष्ट सहना पड़ता है, सीता जी को मैंने बहुत कष्ट दिया, वनवास के समय मेरे द्वारा वहां पर बाली जी आश्रम में भेजवा दिया, मैं राम को समझाने की चेष्टा करता था नहीं समझे, अब मैं बड़ा सज्जा होकर के आऊंगा जिसे उनका आदेश नहीं देना पड़ेगा, हमारे आदेश के अनुसार में वो चले और सब उनकी मैं सेवा करूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी ऐसे भगवान के सेवक थे, उन्होंने इस नगरी को बचाया जैसे भरत जी ने भरत को बचाया, और यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बताया, और सूर्यवंशी नरेश यहाँ के राजा फतपुर का था, और शत्रुघ्न ये तो सूर्यवंशी थे, यहाँ तक मधु दैत्य जो था वो सूर्यवंशी राजा का लड़का था, किंतु बहुत दुष्ट हो जाने के कारण राजा ने उसको तलाक दे दिया था। तलाक मैंने क्या कहा था, सत्य पुत्र कर दिया था, वो शराब पीने लगा तो उस लड़कों के साथ में रहा, इसलिए मधु को वहां से बाहर कर दिया, और उसने तपस्या करके सूर्य वंश का मैं विनाश करूंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके वहां पर राज्य बनाया था। यहाँ के राजा भी सूर्यवंशी हैं। अभी तक राज्यवंश अभी चल रहा है किंतु राज्य नहीं रहा। उन लोगों ने बड़े से लोग भक्त थे लक्ष्मण जी का यह देख करके भाव और लक्ष्मण जी को आराध्य माना क्योंकि इस नगरी को बसाया। इसलिए यहाँ के भरतपुर के राजा का एक पड़ाव भी यहाँ पर एक राजधानी भी है। उन्होंने दिल्ली का मुगल साम्राज्य का खजाना लूटा और लूट करके यहाँ पर ये सब चीजें बनाई थी जो अभी हम लोग देखने के लिए गए थे। इनका मंदिर बनाया लक्ष्मण जी का। ये लोग बड़े भारी भक्त थे और जैसे बदमाश राजा भोगी राजा नहीं थे। मुगलों को ना को दंश चबा दिया यहाँ के महाराज ने। इस तरह से ये लक्ष्मण जी का स्थान है। आज यहाँ पर लक्ष्मण लाल और उनकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी ने कहा कि राम राम के साथ में सीता जी जा रही हैं, आप हमको भी साथ लेते चलिए। कहिए नहीं तो मैया कौशल्या की कौन सेवा करेगा, इसलिए हम राम की सेवा करते हैं। तुम चौदह वर्ष कौशल्या की सेवा करो। उन्होंने उनकी बात मान। चौदह वर्ष तक जैसे लक्ष्मण जी तपस्वी जाकर के बिना नींदे उनको रात्र काल में सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, जो खाया वो खाया नहीं बल्कि कहीं कहीं रख देते थे। इसलिए मेघनाथ को मारने में सफल हुए। यदि कोई चौदह वर्ष तक कभी नहीं कुछ खाया, कभी नहीं सोया, कभी स्त्री का मुख नहीं देखा, वो मेघनाथ को मार सकता था। इसे लक्ष्मण जी ने माना। ये साधारण नहीं थे, बलदेव जी साधारण नहीं है, कृष्ण ही है। उनकी सेवा करने के लिए कृष्ण भी भक्त होकर के बलदेव जी के रूप में गुरु रूप में है। इसलिए लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। इसलिए आज हम लोग भारतवर्ष में और कोई लक्ष्मण जी का मंदिर हम लोग नहीं देख पा रहे। उर्मिला जी भी और तपस्वी है, भरत जी तपस्वी है, क्योंकि उनकी स्त्री मांडवी वो और तपस्वी थी। उनका इतिहास नहीं लिखा गया, मैत्री चरण गुप्त ने इन लोगों का चरित्र लिखा है। इसलिए भगवान की अपेक्षा भक्तों का चरित्र अधिक अनुसरणीय है। उनका चरित्र अनुसरण करके हम लोग भगवान की भक्ति में प्रवेश करते हैं। बोलो लक्ष्मण लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, बजरंग जी की जय, राम पंचायत की जय, गौ प्रमाण।
प्लेस इज टेम्पल ऑफ Lakshman, Urmila and Lakshman. Maharaj is giving very vivid narration here. I want, and is instructing me to speak very fast, but try to be more attentive. You know, Shatrughan, brother of Ram, came here to kill son of Madhu Dasi, Lavanasur. After killing him, he established his kingdom. Madhupuri. At the time, he was very much attached to his brothers Bharat, Shatrughan and Bharat, Ram and Lakshman. This was the fear. So he said to Bharat that you should also come here. And Bharat came and he established his one kingdom nearby. The name of that place is Bharatpur. So, here we see that this place later on where we are standing became capital of that Bharatpur. Lakshman was their very dear brother, so they invited Lakshman also that, brother, we are feeling here lonely, why don't you come sometime? Lakshman also came here and he established his own kingdom also. This place where the temple of Lakshman is also here. And Urmila. This temple is Urmila and Lakshman, one of the rarest most temples. And the deity of Ram is also there. Maharaji is now glorifying Lakshman. Please give your attention on Ram Katha. When Ram killed Ravan, at that time, Sita ji was very pleased and she thought now she will be able to meet Ram. But Ram became very serious. He said that he did not kill Raman to take you back. You have already gone to another man, so I cannot take you back. You may go anywhere.
No.
When he said this thing, at that time Sita was very much aggrieved, and she could not believe it. She said, why did you not tell me this thing before? I was feeling separation from you, and had I been knowing you that you will not accept me, I would have burned myself in that heat of separation. There was no point for me to live here. Lakshman, please, just you create a fire. I will jump in that fire. In fact, Maharaji is giving indication that Ram gave real Sita to fire when this pastime that Ravan took Sita ji took place. So he wanted to take real Sita ji so that this whole pastime took place. Anyway, when Sita ji came to this point that she was going to jump into fire and give her life, and she was hearing such a piercing voice of Ram that he is giving up Sita ji and he won't accept because she has been taken away by another man, she said, in fact, I have committed offense at the lotus feet of Lakshman. Therefore, I have to see this day today. And what were those she was reminding? She said that when I came after marriage to Ayodhya, at the time, Sita ji found that Lakshman was serving Ram at his palace. When Sita ji entered into the palace of Ram, she said to Lakshman that now Ram is my husband, it is my duty to serve him. So please, I request you to give this opportunity to me and leave Ram. And go out of this room. Lakshman said, how can it be possible? Since birth I have not seen a single day when I was not with Ram and not serving him. It is my privilege and I cannot give it up. Sita ji said, no, I am now his wife. He has married me and now this duty comes to me. How come? I have been serving since my birth. Only in one day you claim that I should give up this service and you will obtain this service. He was not in a mood and ready to give up this service. Then there was a dispute and Vishishtha Rishi was called. Vishishtha Rishi came, they heard Vashishtha Rishi came, they heard this. These arguments, he said, look, he instructed to Lakshman, because now Ram has married Sita ji and in front of fire he has given vow that he will look after Sita ji and will accept her services. So it is a duty of and privilege of Sita ji that she will serve Ram in this room, in this palace. And you will do external services. Out of palace, you will serve him, and inside palace, she will serve Ram. When Lakshman heard it, he started crying. And with a very heavy mood, he left that place. Sita ji said that one offense was committed by me at lotus feet of Lakshman, that with a heavy heart, I asked him to leave that palace of Ram. Secondly, when they were in forest exiled for 14 years. At that time, one demon, Marik, he came with a very beautiful form of deer. A golden skin he was having. And Sita ji said, oh Ram, how beautiful this deer is. I want that you catch this deer and I will present it to Bharat. And if you can't catch him alive, then you just give his skin to me, I will give to Arad. Anyway, this was a pastime. Ram went after that deer and he killed that deer by throwing his arrow and gave responsibility to Lakshman to look after Sita. The moment he was struck by arrow, this Marik, who was a demon, very loudly spoke in the voice of Ram, Ha Lakshman, Ha Lakshman. It appeared as if Ram was in trouble and he is calling his brother Lakshman. Sita ji heard it. Lakshman, oh, Ram is in trouble. Lakshman said, Mother Sita, he never called her Sita. Mother, you don't worry. It is some mysterious activity of demons. Ram can never be in trouble. No, I have heard his voice. You go and save him. I told you that Ram can never be in trouble. He has given this responsibility to me to look after you. So kindly don't insist upon me. Now Sita ji spoke some piercing words. He said, you appear to be spy of Bharat, who gave exile to Ram, and now you want that Ram should die, and then you want to acquire me, and you want to obtain his kingdom. You are having some evil feelings in your heart. And when she spoke such piercing words, he could not sustain. He said, it appears that some signs are there, and something bad will happen. Anyway, then he drew a line by his bow. Yeah. Well, anyway, so then Ravana came and he took up Sita. Sita was saying that this was another offense she committed at the lotus feet of Ram. Lakshman. Therefore, today this time has come that she has to see that Ram is leaving him. Leaving us. So, this was the gravity. Then Maharaj is also explaining here that Lakshman and Urmila, they both were dedicated servants of Lord. Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan, they all are expansion of Supreme Personality of Godhead. All are Vishnu Tattva and worshipable. So, explaining the gravity of Lakshman, when Lakshman was going to exile with his brother Bharat, Ram, at that time, Urmila also wanted to go with him. He said, no, my duty is to serve Ram in exile and your duty is to serve Kaushalya at palace. You serve Kaushalya at palace. And you know, the whole 14 years, he did not sleep. Lakshman in service of Ram did not sleep. He did not eat anything. If Ram gave him anything, he keep it somewhere else, but he did not eat. That is why he could kill Meghnad. Meghnad was having this benediction that he will be killed by only that person who had not slept for 14 years, who had not eaten anything for 14 years, and who had not seen face of any woman. Lakshmana was staying with his brother, but he never saw face of his sister-in-law, that is Sita ji. He always looked upon her feet only. This was the highest thing, the state of Lakshman. So it is getting late. Maharaj said something else. He said about that the kings of this place were in dynasty of Ram, which is in Suryavansh. One thing also he told, which is a really good thing for us. Madhu, demon Madhu, who was once upon having domain over here at Madhupuri, he was also from Suryavansh. And Lord Ram was also from Suryavansh. You may be asking, what is this Suryavansh? In India, the kings are having certain dynasties. This one dynasty of Surya, which is coming from sun god. So, and one is coming from moon. So, Krishna is coming from, I think, Krishna is coming from the dynasty of moon. So, he is called from Chandra Vansh. And Ram is coming from the god sun dynasty. So, his dynasty is called Surya Vansh.
राधे कृष्ण नायक
ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हुए वृंदावन मथुरा मधुबन तालबन कुमुदबन बंगलाबन इत्यादि होते हुए गिरिराज गोवर्धन में गए। बड़े अच्छी तरह से वहाँ पर परिक्रमा हुई। वहाँ पर सब लोगों ने भैया दूत का स्नान भी किया कल राधा कुंड में, और वहाँ से हम लोग बहेज गठौली इत्यादि स्थानों से होते हुए हम लोग अब डीग में आ गए। डीग माने क्या? डीग माने होते डीगना। डीगना माने क्या? इधर से उधर अपने बाप से चल जाना। कृष्ण अपने बाप पर चले हुए हैं, गोपियों ने उनको एक चुटकी बजाई और अपने बाप से वो टल गए, डीग गए। उनका धैर्य च्युत हो गया गोपियों के इशारे पर ही, इसलिए नाम का नाम हो गया ये भी। एक अडिग भी है, अडिग माने वो अडिग। कृष्ण राधा जी को इधर उधर करने की बहुत चेष्टा की किंतु राधा जी नहीं चली, इसलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया? अडिग। अडिग इसलिए राधा जी एकदम अडिग रही। कृष्ण पैया पढ़ने लगे, मनाने लगे, ये प्रेम है। आज विश्व में तुम लोग तुम्हारा मत ध्यान समय करना, तुम्हारे लाख पर तुम लोग चुप जाओ। आज विश्व मूर्खों की दृष्टि में बहुत उन्नत हो रहा है, अज्ञानी लोगों की दृष्टि में। आज साइंस बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले विमान लोग नहीं जानते थे हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा था, अब मन का गति से चलने वाले विमान बने हैं। कंप्यूटर का युग आ गया। मेडिकल साइंस में किसी का हृदय गड़बड़ हो गया, उसको निकाल करके दूसरे बंदर का हृदय भी आरोपण कर सकते हैं। रसोई घर में पहले लकड़ी से जलता था, रसोई होती थी, धीरे धीरे गैस सिस्टम और क्या क्या ये सब उन्नति होती। स्विच दबा दो, रसोई का घर आ गया, स्विच दबा दो, डाइनिंग रूम आ गया, स्विच दबा दो, रिटायरिंग रूम आ गया। बस स्विच दबाने की जरूरत है। घर में बैठे अभी क्रिकेट कहाँ हो रहा है यहीं से देख लो। क्विंटल अमेरिका में क्या कर रहे हैं यहीं से सुन लो, अभी से देख लो, बातचीत कर लो एक मिनट में। यह असंभव को संभव मालूम होता है, कर दिया। इस तरह से सारा संसार एक मुट्ठी में आ गया। जब भी चाहो यहीं से इंग्लैंड से अमेरिका से उत्तरी ध्रुव से कहीं से भी बातचीत कर लो उससे, ये सब कुछ हो गया। किंतु इस उन्नति का फल क्या हुआ? आप लोग भी नौजवान लोग सुने, आप लोगों से विशेष निवेदन है, हमारे नौजवान भाइयों से आप लोग सुने। न्यूक्लियर बम हुआ क्या? क्रिकेट में तो उन्नति हुई, फुटबॉल में उन्नति हुई, और सिनेमा जगत तो देख ही रहे हैं। स्टार देखने के आए हजारों में और वहां पर गर्म रहता, तो ये सब सुकून है। यही से जो नदी अभी पार करके हम लोग आए, ये भागीरथी है, और इसमें केदारनाथ से मिलकर के एक और नदी आकर के मिली रुद्रप्रयाग में, वो मंदाकिनी है। और फिर जब हम लोग नीचे और उतरते हैं तो देवप्रयाग, वहाँ पर मंदाकिनी, अलकानंदा, भागीरथी सब मिलकर के वहीं से हरिद्वार में उतरती है, और हरिद्वार से नीचे उतरते ही जाकर के गंगा में मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, बोल दीजिए, ये सब तो कुंड है, हम यहाँ से भागीरथी है, यहाँ से
Badrik Ashram. Badrik Ashram is well known in India on the mountain, Himalayan mountain. But here also we see a Badrik Ashram. This river that we cross, it is called Bhagirathi. Bhagirathi is in fact nothing but Ganges itself. The name of Ganges is, another name of Ganges is Bhagirathi. Whatever way when we go to Badrik Ashram, the similar way we find here also. This place is resembling to that place, or Maharaj says basically this is the original place and that place resembles to this place. If we go to the mountain, we find that on the peak of mountain above Badrik Ashram, there is also Gangotri and Yamunotri, from where Ganges have come out. Here also is Gangotri and Yamunotri. About 2 kilometers we have to do mountaineering. If anyone wants, Maharaj, they can go, but we are not going. We can arrange for a special arrangement. So how come that Badrik Ashram is here? Maharaj is explaining, just as in Govardhan, we saw that Krishna, in order to accept worship of all Brajvasis, became Haridev. And similarly, Nanda Baba and Yashoda, they wanted for pilgrimage to Badrik Ashram. This is Saptakund. There is a pond in Badrik Ashram. Water is on the bank of Ganges. And that pond has hot water, boiling water. If you put your rice in it, it goes like ice. And next to it, the water of Bhagirath, that is Bhagirathi, that is Ganges, is as cold as ice. And adjacent to that Bhagirathi, there is a pond in Badrik Ashram. The water is boiling water. And our sages like Vedavyas and other rishis, those who live there, they use that water. And when water of this pond and Bhagirathi mix, it becomes lukewarm water and they use it for bathing. God Premanande.
Dasana Tikhare Bhavani Tavana
Oh, God.